प्रिय श्रोताओ नमस्कार। बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के पुराने नियम में से सपन्या नामक पुस्तक का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि इस अध्ययन के द्वारा आपको आत्मिक लाभ मिल रहा है। तो आइए आज के इस बाइबल अध्ययन में हम सम्मिलित हों, लेकिन इससे पहले मन की तैयारी के लिए सुनते हैं एक मधुर गीत।
मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा, मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा, मुझको है पता वहीं से पाऊंगा, मुझको है पता सहायता वहीं से पाऊंगा। मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा, मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर, उसके गुण गाऊंगा। नीचे धरती ऊपर आसमां बनाया है परमेश्वर है वो, उसके गुण गाऊंगा। मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और मधुर नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मुझे आशा है कि आप सब परमेश्वर पिता की दया से कुशल पूर्वक हैं और हमेशा की तरह आज फिर से परमेश्वर के वचन में से सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं और अपने उन सभी नए मित्रों का भी जो आज पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि हम इन दिनों बाइबल में से सपन्याह नामक पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं और इस पुस्तक में हम सब देख रहे हैं कि परमेश्वर जो भी कहता है वह उसे पूरा करता है और हम यहाँ पर यहूदा के विनाश के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। मेरे मित्रों, इससे पहले कि आज हम सब आगे बढ़ें और अधिक इसके बारे में सुने और सीखें, आइए हम सब प्रार्थना करें और परमेश्वर से सहायता मांगे ताकि हम इस वचन की गंभीरता को समझ सकें। प्रेमी और दयालु पिता परमेश्वर, हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए जिसे आपने हमारे जीवन में बड़े ही अद्भुत रीति से दिया है, ताकि हम दूर दराज में बैठ कर के भी एक साथ आपके जीवित और सामर्थी वचन का अध्ययन रेडियो के माध्यम से कर सकते हैं। इस समय जब हम आपके वचन में से मनन चिंतन करते हैं, सुनते और सीखते हैं, तो हमारी प्रार्थना है कि आप हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों को अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान करें, ताकि प्रत्येक जन जब आपके वचन को सुनता है तो आपका वचन उनके हृदयों से बोलने और बातचीत करने पाए, उनकी कमजोरियों और त्रुटियों को दिखाने पाए, समझाने पाए, ताकि अपनी बुराइयों से छुटकारा पाकर एक नया जीवन, आनंदमय जीवन जी सकें। हमारी प्रार्थना है उन भाई बहनों के लिए जो निराश हैं, परेशान हैं, चिंता और तनाव में हैं, बीमार अवस्था में हैं। प्रभु जी, आप उनकी भी सुधि लीजिए, उनकी भी सहायता कीजिए, ताकि प्रत्येक जीवन आप में धन्य होने पाए। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे मित्रों, जैसा कि मैंने आपसे कहा है कि हम सब इन दिनों सपन्याह की पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं। सपन्याह स्पष्ट कहता है कि इसराइल ने सच्चे परमेश्वर को ठुकराकर बाल और मोलेक और सृजित वस्तुओं की उपासना आरंभ कर दी थी। परमेश्वर की उपासना का तो वे केवल स्वांग रच रहे थे। वहां धोखाधड़ी और उपद्रव था, गरीबों को लूटा जा रहा था। धनवान बहुत धनवान थे और गरीब कंगाल हो गए थे। इस कारण परमेश्वर कहता है कि वह यहूदा को दंड देगा। वहां रोना और पीटना चारों ओर सुनाई देगा। परमेश्वर उस देश को ऐसा नष्ट करेगा कि सब कुछ उजड़ जाएगा। कहता है, मैं धरती के ऊपर से सबका अंत कर दूंगा। यहोवा की यही वाणी है। जी हां, परमेश्वर कटु उपहास के साथ सपन्या के द्वारा से कहता है, यहोवा ने यज्ञ सिद्ध किया है और अपने पाहुनों को पवित्र किया है। अतिथि बलि होंगे और यहूदा का दंड बलि होगा। तो आइए मेरे मित्रों, हम आगे बढ़ते हुए सपन्या की पुस्तक 1 अध्याय उसके 8 पद को पढ़ें। यहां पर लिखा हुआ है, यहोवा यज्ञ के दिन मैं हाकिमों और राजकुमारों को और जितने परदेश के वस्त्र पहना करते हैं उनको भी दंड दूंगा। मेरे प्रियो, यहां पर कहने का अर्थ है कि अगुए परमेश्वर से दूर हो गए थे। सिद्दिकिया के राज्यकाल का इतिहास को आप पढ़ें। उसके पुत्र उसकी आंखों के सामने घात किए गए और उसकी आंखें निकाली गई थी। इसे हम दूसरे राजाओं की पुस्तक 24 और 25 पद में पढ़ते हैं। यह अति निर्दयता का काम था। जी हां, परंतु परमेश्वर ने पहले ही उन्हें चेतावनी दे रखी थी। उनके लिए वह समय यहोवा का दिन था। सपन्या आगे कहता है 1 अध्याय उसके 9 पद में, उस दिन मैं उन सबों को दंड दूंगा जो डेवड़ी को लांगते और अपने स्वामी के घर को उपद्रव और छल से भर देते हैं। डॉक्टर चार्ल्स फेनबर्ग ने अपनी टीका में टिप्पणी की है, यहां संदर्भ उस बात का है कि धनवानों के दास अपने घरों से निकलकर दूसरों की संपत्ति लूट रहे थे कि उनके स्वामी अधिक धनवान हो जाएं। उस युग में गरीबों को लूटा जाता था। उनमें या तो बहुत धनवान लोग थे या कंगाल। परमेश्वर उन्हें इसी कुकर्म का दंड देगा। आज भी हमारे देश में ऐसे लोग हैं जो अपनी सुरक्षा तो करते हैं परंतु दूसरों को लूट करके धन बटोरते हैं। यहां पर लिखा गया है कि ऐसे कुकर्म के लिए परमेश्वर दंड देगा। सपन्याह 1 अध्याय उसके 10 पद में आगे लिखा है, यहोवा की यह वाणी है, उस दिन मछली फाटक के पास चिल्लाहट का और नए टोले मिशनाह में हाहाकार का और टीलों पर बड़े धमाके का शब्द होगा। लिखा है उस दिन, यह यहोवा के दिन के बारे में है। तब आगे लिखा है मछली फाटक के पास चिल्लाहट। मेरे प्रियो, आज मछली फाटक को दमिश्क द्वार कहते हैं। इस फाटक से वे गलील सागर और यर्दन से मछली पकड़ करके लाते थे। यह फाटक यरूशलेम के उत्तर में था। तब आगे लिखा है नए टोले मिशनाह में हाहाकार का और टीलों पर बड़े धमाके का शब्द होगा। यरूशलेम पर्वतों से घिरा एक शहर है। सपन्या कहता है कि दंड के समय जगह जगह रोने का शब्द सुनाई देगा। वह क्या ही भयानक होगा कि हर एक स्थान से रोने की आवाज आएगी। सपन्या 1 अध्याय के 11 पद में आगे हम पढ़ते हैं, हे मत्तेश के रहने वालों, हाय हाय करो, क्योंकि सब व्यापारी मिट गए। जितने चांदी से लदे थे उन सब का नाश हो गया है। कहता है मत्तेश, अर्थात यरूशलेम में। शायद बाजार लगाने वाला स्थान नीचा था, विलाप वाली दीवार के सहारे का स्थान जो मंदिर से लगा हुआ था। मत्तेस के रहने वाली हाय हाय करो, क्योंकि सब व्यापारी मिट गए, जितने चांदी से लदे थे सब का नाश हो गया है। जी हाँ, उस समय आता है कि परमेश्वर उन्हें नाश करेगा। सपन्या एक अध्याय के 12 पद में हम पढ़ते हैं, लिखा है, उस समय मैं दीपक के लिए हुए यरूशलेम में ढूंढ ढाड़ करूंगा, और जो लोग दाख मधु के तलछट तथा मैल के समान बैठे हुए मन में कहते हैं कि यहोवा ना तो भला करेगा और ना बुरा, उनको मैं दंड दूंगा। कहता है, उस समय मैं दीपक लिए हुए यरूशलेम में ढूंढ ढाड़ करूंगा, अर्थात कोई छिपना चाहे तो छिप नहीं पाएगा। परमेश्वर उनके बुरे कामों और पापों पर से पर्दा उठाएगा। आज भी बहुत से लोग हैं जो अपने पापों पर पर्दा डाल करके बैठे हुए हैं और सोचते हैं कि इसके बारे में किसी को पता नहीं है, मेरे माता पिता नहीं जानते हैं, मेरे भाई बहन नहीं जानते हैं, यहां तक कि पति पत्नी कहते हैं कि मेरा पति नहीं जानता, मेरी पत्नी नहीं जानती। परंतु ध्यान रखें कि परमेश्वर हर एक बातों को जानता है और वह उस पर से पर्दा को उठाएगा। आगे देखते हैं, लिखा है, जो लोग दाख मधु के तलछट तथा मैल के समान बैठे हुए हैं उनको मैं दंड दूंगा। वे समृद्धि के समय में थे और कहते थे चिंता मत करो। वे सोच रहे थे कि परमेश्वर उन्हें दंड नहीं देगा, जैसा कि आज भी बहुत सारे लोग सोचते हैं कि परमेश्वर उन्हें दंड नहीं देगा। मेरे प्रियो, आज भी हम सब यही सोच रहे हैं कि परमेश्वर हमें दंड नहीं देता है। आगे कहता है, वे मन में कहते हैं कि यहोवा ना तो भला करेगा और ना बुरा। उनकी यह धारणा थी कि इसी कारण हबक्कूक भी कहता है कि हे परमेश्वर, तू कुछ करता क्यों नहीं है। परमेश्वर ने जब उत्तर में हबक्कूक को दर्शन दिखाया तो वह अत्यधिक भयभीत हो गया और परमेश्वर से दया की भीख मांगने लगा। आज मनुष्य लगभग सब ही परमेश्वर के बारे में उदासीन हैं। वे कहते हैं परमेश्वर ना तो भला करता है ना ही बुरा। मेरे मित्रों, मनुष्य को परमेश्वर सब कुछ दे देता है, वह कहता है परमेश्वर नहीं है। मनुष्य यही कह रहा है कि परमेश्वर नहीं है, और यदि है भी तो हमें उसकी आवश्यकता नहीं है। वे भ्रम में हैं। सपन्या इस तथ्य को स्पष्ट करेगा। तो आइए हम पढ़ें सपन्या की पुस्तक 1 अध्याय उसके 13 पद। लिखा है, तब उनकी धन संपत्ति लूटी जाएगी और उनके घर उजाड़ होंगे। वे घर तो बनाएंगे परंतु उनमें रहने ना पाएंगे, और वे दाख की बारियां लगाएंगे परंतु उनमें दाख मधु ना पीने पाएंगे। मेरे मित्रों, लिखा है कि उनकी धन संपत्ति लूटी जाएगी। उनकी संपत्ति जिसे उन्होंने लूट करके एकत्र किया था लूट ली जाएगी, और तब कहता है कि उसके घर उजाड़ होंगे, अर्थात वहां उल्लू बोलेंगे, गीदड़ रहेंगे। तब वह कहता है वे घर तो बनाएंगे परंतु उनमें रहने ना पाएंगे, और वे दाख की बारियां लगाएंगे परंतु उनसे दाख मधु ना पीने पाएंगे। परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार उन्हें दाख लगाने के बाद उसका फल खाने से पूर्व युद्ध के लिए नहीं जाना था। विवाह के एक वर्ष तक पुरुष युद्ध के मैदान में नहीं जाएगा। यहां परमेश्वर कहता है कि वे अपने दाख की बारी से बना दाख मधु पीने योग्य ना होंगे, क्योंकि उन्होंने पाप किया था। जी हाँ, उन्हें युद्ध से विश्राम नहीं मिलेगा, उन्हें विवाह के लिए भी समय नहीं मिलेगा, क्योंकि शत्रु बाढ़ के समान आएंगे। जब आप परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन करेंगे तो निश्चय जानिए कि आप घर बनाएंगे परंतु आप रहने नहीं पाएंगे। आज बहुत से लोग हैं जो बहुत सुंदर मकान बनाते हैं परंतु उसमें रह नहीं पाते, क्योंकि वे परमेश्वर से दूर हैं। और यही कारण है कि परमेश्वर उन्हें घर बनाने तो देता है परंतु उसके रहने से पहले अपने पास बुला लेता है। मेरे मित्रों, सपन्याह कहता है 1 अध्याय उसके 14 पद में, यहोवा का भयानक दिन निकट है, वह बहुत वेग से समीप चला आता है, यहोवा के दिन का शब्द सुन पड़ता है, वहां वीर दुख के मारे चिल्लाता है। यहोवा का भयानक दिन निकट है, दूर भविष्य में यहोवा का भयानक दिन महाक्लेश का समय होगा। सपन्याह के युग में राजा यशयाह के बाद एक भी ईश्वर भक्त राजा नहीं हुआ था। जी हाँ, यहोआहाज, यहोआकीम, यहोयाकीन, सिद्दिकिया आदि सब ही सब दुष्ट थे। परमेश्वर से दूर होने के कारण अब उन्हें दंड मिलेगा, परंतु यहोवा के भयानक दिन का प्रकोप उन पर अभी पूरा नहीं पड़ेगा। सपन्याह कहता है, यहोवा का भयानक दिन निकट है, वह बहुत वेग से समीप चला आता है। दूसरे शब्दों में, विलाप की दीवार की प्रथा निश्चय ही बनेगी और महाक्लेश के बाद तक रहेगी, क्योंकि शांति के राजकुमार के आने तक और उसके पहचाने जाने तक उन्हें शांति नहीं मिलेगी। मेरे मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरे एक मित्र ने मुझे बताया कि जो इसराइल गया हुआ था, उसने बताया कि यरूशलेम की दीवार टूटी हुई है और आज भी यहूदी उस दीवार पर अपना सिर पटक कर शांति की कामना करते हैं। और यहां पर लिखा हुआ है कि शांति के राजकुमार के आने तक और उसके पहचाने जाने तक उन्हें शांति नहीं मिलेगी। सपन्याह आगे कहता है 1 अध्याय के 15 पद में, वह रोष का दिन होगा, वह संकट और सकेती का दिन, वह उजाड़ और विनाश का दिन, वह अंधेर और घोर अंधकार का दिन, वह बादल और काली घटा का दिन होगा। डॉक्टर चार्ल्स फेनबर्ग इस पद में शब्दों के खेल का अनावरण करते हैं जो हिंदी अनुवाद में प्रकट नहीं है। कहता है, उजाड़ और विनाश, उजाड़ और विनाश के मूल इब्रानी शब्दों की आवाज एक सी है जो विनाश की एक रूपता प्रकट करते हैं। सपन्याह दंड की कठोरता और उग्रता को व्यक्त करता है। अब एक प्रश्न उठता है, प्रेम करने वाला परमेश्वर ऐसा कैसे कर सकता है? जी हाँ, यह वैसा ही है जैसा मैंने प्रस्तावना में एक छोटी बच्ची की कहानी के द्वारा आपको समझाना चाहा था कि अपनी पुत्री को असहनीय कष्ट में डालने के पीछे उसके पिता का अगाध प्रेम था। यद्यपि रोष का दिन परमेश्वर के दंड का समय होगा, उसमें परमेश्वर का प्रेम निहित होगा। जो भी हो, परमेश्वर प्रेम है। जी हां, चार्ल्स स्पर्जन को किसी ने कहा था कि हवा कैसी भी बहे, परमेश्वर का प्रेम सर्वत्र है। और यह सच है मेरे मित्रों कि हवा जिधर चाहती है उधर बहती है, और परमेश्वर का प्रेम ऐसा ही है। परमेश्वर दंड देने में भी प्रेम करता है, उसे बुराई का दंड देना ही पड़ता है क्योंकि वह अपने प्रति सत्यनिष्ठ है, और बुराई का दंड दिए बिना वह अपने प्रेम पात्रों के प्रति निष्ठा नहीं निभा सकता है। यदि हम अनंत काल तक रोग, दुख, दर्द, पीड़ा, निराशा आदि से घिरे रहें, तो मेरे विचार में वह प्रेमी परमेश्वर नहीं है। यदि आप परमेश्वर के दंड की चर्चा करें कि वह कठोर दंड देने वाला आ रहा है और संसार से पाप हटा देगा तो मैं कहूंगा हल्लेलुया, अर्थात परमेश्वर की स्तुति हो, और मान लूंगा कि वह प्रेमी परमेश्वर है, चाहे वह ऐसा करे या ना करे। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर है। प्रेम के साथ वह डांटता भी है, हमें सुधारता भी है और मौका भी देता है ताकि हम अपने पाप से फिरकर उसकी निकटता में रहें। सपन्या 1:16 में आगे लिखा है, वह गढ़ वाले नगरों और ऊंचे गुम्मटों के विरुद्ध नरसिंघा फूंकने और ललकारने का दिन होगा। परमेश्वर ने इसराइल को तुरही फूंकने की विभिन्न विधियां बताई थीं। गिनती की पुस्तक 10:9 में उसने कहा, जब तुम अपने देश में किसी सताने वाले बैरी से लड़ने निकलो तब तुरहियों को सांस बांधकर फूंकना, तब तुम्हारे परमेश्वर यहोवा को तुम्हारा स्मरण आएगा और तुम अपने शत्रुओं में बचाए जाओगे। सपन्या कहता है, वह गढ़ वाले नगरों और ऊंचे गुम्मटों के विरुद्ध नरसिंघा फूंकने और ललकारने का दिन होगा, परंतु परमेश्वर उन्हें बचाएगा नहीं। क्यों? क्योंकि वह उन्हें दंड देगा, अतः वह उन्हें बचाएगा नहीं, शत्रु के हाथों में कर देगा। इस कारण वह गढ़ वाले नगरों और ऊंचे गुम्मटों के विरुद्ध नरसिंघा फूंकने और ललकारने का दिन होगा, इसके बारे में वह कहता है कि वह उन्हें दंड देगा। मेरे मित्रों, सपन्या 1:17 में लिखा हुआ है, मैं मनुष्यों को संकट में डालूंगा और वे अंधों के समान चलेंगे, क्योंकि उन्होंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है, उनका लहू धूली के समान और उनका मांस विष्ठा के समान फेंक दिया जाएगा। मेरे मित्रों, आप प्रेम को पैसों से नहीं खरीद सकते, आप चांदी सोने से मित्र नहीं बना सकते, आप मनुष्य को प्रभावित नहीं कर सकते हैं। हम सोचते हैं कि पैसा जीवन के कष्टों एवं बुराइयों को दूर कर सकता है, पैसा सब समस्याओं का समाधान है। ध्यान रखें, परमेश्वर कहता है कि जब वह दंड देगा तब न तो सोना काम आएगा और न ही चांदी उनका बचाव कर सकेंगे। इसलिए वह कहता है कि उसके जलन की आग से सारी पृथ्वी भस्म हो जाएगी, वह पृथ्वी के सारे रहने वालों को घबरा कर उनका अंत कर देगा। परमेश्वर ने उन्हें अपने देश से निकाल दिया था। क्यों? क्योंकि वह उनसे प्रेम करता है। यदि वह उस समय ऐसा नहीं करता तो उसे उनकी आने वाली पीढ़ियों का सर्वनाश देखना पड़ता, अतः परमेश्वर को पाप का घातक अंग काटना पड़ा ताकि वे सुरक्षित और भले चंगे रहें। मेरे मित्रों, हम इस अध्याय के अंतिम पद को पढ़ते हैं। 1:18 में लिखा है, यहोवा के रोष के दिन में न तो चांदी से उनका बचाव होगा और न सोने से, क्योंकि उसके जलन की आग से सारी पृथ्वी भस्म हो जाएगी, वह पृथ्वी के सारे रहने वालों को घबरा कर उसका अंत कर डालेगा। जी हाँ, आप चाहे कितना भी धनी क्यों ना हो, परमेश्वर का जब जलन पृथ्वी पर या आप पर पड़ता है तो कोई भी उससे बच नहीं सकता। आपकी धन संपत्ति, आपका रुपया पैसा, आपका सोना चांदी आपको आपके पाप से नहीं बचा सकता, अर्थात परमेश्वर को आपके पाप का दंड देना ही होगा। मेरे प्रिय मित्रों, आज बहुत सारे लोग अंधेरे में पड़े हैं। वे सोचते हैं कि इस संसार में वे बच जाएंगे, परंतु वे भूल जाते हैं कि परमेश्वर उन पर अपनी निगाहें टिकाए हुए हैं। आप इस संसार के लोगों से बच सकते हैं, परंतु परमेश्वर से नहीं बच सकते हैं। वह अपने नियत समय पर आपको अवश्य ही दंड देगा, चाहे आप कोई भी क्यों ना हो, क्योंकि परमेश्वर धर्मी है, न्यायी है। वह न्याय अवश्य ही देगा। उसने दाऊद के जीवन में भी दंड को दिया था, क्योंकि जब दाऊद पाप में पड़ा तो परमेश्वर ने उसे भी दंड दिया। मेरे मित्रों, आज हम सब के लिए भी यह आवश्यक है कि हम विचार करें अपने जीवन के प्रति कि क्या हम आज पापमय जीवन जी रहे हैं और यह सोच करके बैठे हैं कि हम बच जाएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि कोई भी परमेश्वर से नहीं बच सकता। इससे पहले कि हम नाश किए जाएं, इससे पहले कि हमें अवसर ना मिले, क्यों ना हम परमेश्वर की ओर फिरें? क्योंकि बाइबल हमें बताती है कि यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। जी हाँ, वह यहूदा के लोगों को भी मौका दिया, परंतु वे नहीं फिरे और यही कारण है कि परमेश्वर को उन्हें दंड देना पड़ा। आज वह आपके जीवन को बचाना चाहता है, क्षमा देना चाहता है। क्या आज आप उसके द्वारा क्षमा और उद्धार को पाना चाहते हैं? यदि हाँ, तो आज ही प्रभु यीशु को अपने जीवन में ग्रहण करें। उससे कहें कि प्रभु, मैं आपकी निकटता में आता हूं, आप मेरी सहायता करें, आप मेरे जीवन का संचालन करें, मेरे पापों को क्षमा करें, मुझे एक नया व्यक्ति बनाएं, एक आदर्श व्यक्ति बनाएं, एक पवित्र व्यक्ति बनाएं। निश्चय जाने कि वह आपके हृदय की पुकार को इस समय भी सुन रहा है, आपकी आवाज को वह सुन रहा है। तो मेरे प्रियो, आज मैं इसी के साथ इस अध्ययन को आपकी निकटता में रखता हूं और मैं आशा करता हूं कि आज के इस अध्ययन के द्वारा आपने अपने जीवन में अवश्य ही आत्मिक लाभ प्राप्त किया है। मैं आशा करता हूं कि आप अगले अध्ययन में भी अपने मित्रों के साथ अवश्य शामिल होंगे और परमेश्वर के वचन से अधिक सीखेंगे, ताकि आप परमेश्वर की संगति में बढ़ सकें। प्रभु आप सबको आशीष दे और आप सबकी सहायता करें।
अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सत्य वचन। हमें विश्वास है कि आज का ये अध्ययन आपके आध्यात्मिक जीवन के लिए फायदेमंद सिद्ध हुआ है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस अध्ययन से आपको और क्या क्या आशीष मिली हैं। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपको देने के लिए हमारे पास नया नियम एवं पूरी बाइबल उपलब्ध है। यदि आप इसे प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। पता एक बार फिर से सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। आप इस नंबर पर हमें SMS या टेलीफोन भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। एक बार फिर से सुन लीजिए, हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, प्रभु आपको आशीष दे।
फिसले ना कभी कदम राहों में, इसीलिए ना सोता दिन रातों में, फिसले ना कभी कदम राहों, इसराइल।